संख्या में समय
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भये अरहंतादि मम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। मैं हमेशा एक सपना देखा करता था जब मैं आचार्य श्री के चरणों में आया था कि कभी अपने जैन धर्म दर्शन और अपनी संस्कृति को वर्तमान विज्ञान से जोड़कर कभी हम अध्ययन कर पाएंगे। और आचार्य महाराज की कृपा और उनके आशीर्वाद से यह मेरा सपना साकार हुआ। हमने पिछले चार विचार संगोष्ठियों में इसी तरह विभिन्न जैन दर्शन और धर्म से संबंधित विषयों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः व्याख्यायित करने का प्रयास किया। शायद आज की ये बहुत बड़ी जरूरत है और हमें इस बात का गौरव है, होना भी चाहिए। अभी जब हम थोड़ी दूर देर पहले अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को कैसे हम संभालें, इस बारे में हमारे पास हमारे अपने छोटे से साधनों में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, और हम वर्तमान में जिस तरह विज्ञान का विकास हो रहा है उससे क्या लाभ ले सकते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धर्म विज्ञान की मदद नहीं कर सकता या कि विज्ञान धर्म की मदद नहीं कर सकता। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग ही रखना चाहिए, ऐसा हम लोग हमेशा से सोचते आए हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि विज्ञान यदि धर्म को स्वीकार कर ले तो वो उस अमूर्त तत्व को भी खोज लेगा जिसे कि वो अभी तक नहीं खोज पाया है। और धर्म में तो मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही प्रकार के तत्वों की चर्चाई है, लेकिन हमने फिजिकल या इस भौतिक जगत के बारे में उतना विचार नहीं किया जितना कि हमने आत्मिक जगत के बारे में विचार किया। पर क्या करें, जीना तो हमें भौतिक जगत में पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि हम उस भौतिक जगत में जहां हम जी रहे हैं वहां कैसे हम उसे सुरक्षित और संरक्षित रख करके और अपने आत्म कल्याण को कर सकें। मुख्य ध्येय किसी भी धर्म का आत्म कल्याण होता है, लेकिन उस आत्म कल्याण के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। हम लोग उस बात को भी समझें, हमारी कोशिश वो भी होनी चाहिए। अभी जब मैं सुन रहा था, पता नहीं आपको कैसा लगा, पर मुझे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इन चीजों को जानना। आज शायद इस तरह का टेस्ट बहुत कम लोगों का है। आज हम वो सब चीजें सुनना चाहते हैं जो कि हमें बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएं, या कि जो हमारा थोड़ा सा इंटरटेन करें। शायद हमने प्रवचन को भी एक इंटरटेन या कि मनोरंजन का साधन जैसा बना लिया है। कई बार मुझे ऐसा लगने लगता, मेरे अपने बहुत वर्षों का, हो सकता है कि मेरा अनुभव ठीक नहीं हो, मैं सुधार लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगता है कई बार कि हम लोग जो वास्तविक तत्व है उसको नहीं समझ करके सिर्फ एक आपको बात कहनी है और हमको सुननी है और वापस लौट जाना है कि चलो एक घंटे जो है मजा आ गया। तो ये जो मजा आ गया ना, वो तो वो डमरू बजाने वाला और तमाशा दिखाने वाला भी मजा क्रिएट कर देता है। ये चीज जो है वो दोनों को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, वो जो आत्म आनंद है वो जो बहुत सांसारिक मजा है उससे बहुत ऊंची चीज है। हम इस तरह की चीजों में भी धीरे धीरे करके इंटरेस्ट लें। जो लोग लेते हैं मुझे लगता है कि उन्हें गौरव होना चाहिए कि हमारे पास हमारा अपना कितना वैभवशाली हमारी अपनी विरासत है और उसके संरक्षण की आज आधुनिक कितनी अच्छी पद्धतियां हैं, हम उनका उपयोग करें। हम थोड़े से जो रिजिड हो गए हैं कुछ चीज़ों के मामले में, हमें वहां पर पोलाइट होना चाहिए। और जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जैसे हम रिजिड हैं कि हमको तो अभिषेक होना ही चाहिए, ठीक है, ये आपकी रिजिडनेस बहुत अच्छी है, लेकिन अभिषेक किस हद तक और किन किन प्रतिमाओं पर किस तरह होना चाहिए, ये क्या हम कोई संदेश इससे नहीं ले सकते? हमें मंदिर में एक नौकर रख करके सफाई करवानी चाहिए, एक पुजारी रख करके हमें प्रक्षाल करवाना चाहिए, ये तो हम इसमें बहुत रिजिड हैं। क्या हम इसमें थोड़ा सा संशोधन नहीं कर सकते कि एक दिन जरूर से हमें मंदिर में, जहां कुछ भी हमारे मंदिर को क्षति पहुंचाने वाली चीज है उस पर विचार करने के लिए एक दिन अपना देना है और क्षति ना पहुंचे ऐसा प्रिवेंशन वहां पर करना है, चाहे हमें टेक्नीशियंस की मदद लेनी पड़े। हमें शायद ट्रेडिशनल लोगों के को एक तरफ रख करके और टेक्नीशियंस को ला करके और हमें अपने मंदिर की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझ करके उसे दुरुस्त करना पड़े, क्या हम ऐसा पसंद नहीं करेंगे? करना तो चाहिए। फिर जैसा आप समझें, कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, मैंने बिना देखे उनका जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। थोड़े से प्रश्नों का जवाब दूंगा क्योंकि मैंने सोचा है कि एक टॉपिक तो ये हो गया और मैं सोचता नहीं था, मैंने तो जब इंटेक एक बहुत बड़ी संस्था जो कि यहाँ भी संरक्षण का कार्य कर रही है ग्रंथों के, जब मेरा उनसे संपर्क हुआ तो मुझे लगा कि ये अच्छा हुआ कि ग्रंथों के संरक्षण की प्रक्रिया तो शुरू हो गई, क्या इसी तरह से मूर्तियों के संरक्षण की प्रक्रिया पे कुछ काम हो सकता है? और ग्वालियर में और डॉक्टर अशोक जी से मिलना हुआ और उन्होंने इस पर काम किया और इतना बढ़िया काम किया, मैं तो बहुत आह्लादित भी हूँ और चकित भी हूँ कि उन्होंने इतनी सारी जानकारी इतने थोड़े समय में हासिल करके और उसकी क्या पद्धतियां हैं वो भी हमारे सामने रख दी हैं। कुछ प्रश्न आए हैं कि मंदिर में जो पीपल के पेड़ वगैरह लग जाते हैं वो मजदूर नहीं उखाड़ते हैं, इसका क्या उपाय है? इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँ, वैसे भी वृक्षों को नष्ट करना तो ठीक नहीं है, पर उनको आगे ना बढ़ने दें और वे आगे ना बढ़ें, इस तरह की प्रक्रियाएं जो वक्ता ने कही थी कि गर्मी के दिनों में जब उनमें ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, जब कोई उनका एक समय होता है कि जब वे सुप्त अवस्था में होते हैं, हम अगर चाहें तो उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी जगह और उस जगह को हम ट्रीट करके आगे फिर उसमें कोई और इस तरह का पौधा ना उगे ऐसा कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मूर्ति पर सफेद काई को रासायनिक प्रक्रिया से कैसे संभव है क्योंकि मूर्ति प्रतिष्ठित होती है? ठीक है, मूर्ति प्रतिष्ठित है, हम उस पर जलधारा करते हैं, हम उस पर अन्न और दूसरी जो पद्धतियां हैं उनसे भी हम दूध दही घी इत्यादि की पद्धति भी जहां प्रचलित है वहां उससे भी हम उसको करते हैं। हम जब कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट उस पर करते हैं तो हम जब कोई रासायनिक प्रक्रिया करेंगे तो हम उससे पहले ये विचार कर लेंगे, दूध डालने से पहले हम विचार कर लेते हैं कि शुद्ध है कि नहीं, पानी डालने से पहले हम तय कर लेते हैं कि प्रासुक है कि नहीं। ठीक इसी तरह से अगर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसकी शुद्धि और अशुद्धि का जरूर विचार करना चाहिए। मुझे ऐसा याद आता है कि रीठा का प्रयोग भी, और लोग जब वर्ष में एक बार मूर्तियों का मंजन करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, वो भी तो एक केमिकल है, रीठा भी तो एक केमिकल। केमिकल के मायने ये थोड़ी है कि वो जैविक ही हो, वायोकेमिकल्स ही हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हैं, हम उनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिनमें कि कहीं कोई हिंसा नहीं है, जिनमें कि कहीं कोई अपवित्रता नहीं है, जिससे कि हमारी मूर्ति की जो गरिमा है, हमारे मूर्ति के जो मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया गया है, वो भी डिस्चार्ज ना हो, वो भी खत्म ना हो। मूर्ति पर जो भी ट्रीटमेंट दें, सबसे जरूरी ये बात भी ध्यान में रखने की है कि मूर्ति की प्रतिष्ठा के मायने क्या है। मूर्ति को हमने प्रतिष्ठित किया अपनी श्रद्धा से, मंत्रों से, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अभिषेक की प्रक्रिया से अगर वे मंत्र और मूर्ति की जो कहना चाहिए प्रतिष्ठा है वो तो नहीं हमारी खंडित होती। हम आजकल देखते हैं कि अभिषेक की जो प्रक्रिया डेवलप हो गई, लगातार अभिषेक करने की प्रक्रिया और भगवान को जल में ही रखे रहने देने की प्रक्रिया, क्या वो उससे मूर्ति की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती? आती तो होगी। मूर्ति को जिस तरह हमने अभिमंत्रित किया है, हम उस पर भी विचार करें, हम जैसे केमिकल्स पर विचार करें, जरूर करें कि कौन से केमिकल्स हमको ट्रीटमेंट देना है। ठीक इसी तरह से किस तरह अभिषेक करना, अभिषेक तो करना जरूर करना है, लेकिन किस प्रक्रिया से अभिषेक करना उस पर भी हम ध्यान दें। ये अवेयरनेस के लिए तो अपन ने ये इतना उपाय कर रखा है, नहीं तो क्या जरूरत थी? इस अवेयरनेस की जरूरत है हमको कि हम कम से कम ये जानने तो लगे कि हम किस तरह से उस प्रक्रिया को करें। तो मैं इसको यही कहूँगा कि मूर्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे, वो मूर्ति प्रतिष्ठित है, अभिमंत्रित है, उसको कहीं भी कोई क्षति ना पहुंचे, और जो क्षति पहुंचाने वाले एलिमेंट्स हैं वो हम वहां से उनको हटा सकें, ऐसा कोई ट्रीटमेंट हम खोजें और बैठें और उस पर विचार करें। मूर्ति पर से काई हटाने में मूर्ति का पुरातत्व नष्ट होगा। मैं सोचता हूं कि पुरातत्व को फिर से शायद पुनर्व्याख्यात करना पड़ेगा। पुरातत्व का संरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन संरक्षण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? संरक्षण की प्रक्रिया के मायने ये नहीं है कि हम उसे जैसी है वैसी हालत में नष्ट होने के लिए छोड़ दें। क्या यही पुरातत्व का संरक्षण है? पुरातत्व का संरक्षण तो यह है कि आज जिस स्थिति में है उससे और अधिक बेहतर स्थिति में तो संभव नहीं हो सकना, तब क्यों ना हम उससे भी गई बीती स्थिति ना बन पावे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट उसके चारों तरफ कर दें, तो शायद पुरातत्व का संरक्षण होगा। हम सोचते हैं कि शायद कुछ ट्रीटमेंट देने से पुरातत्व नष्ट हो जाएगा। नहीं भैया, हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिनमें कि विदेश में जो भी चीजें सुरक्षित रखी जा रही हैं एज इट इज, आज से 100 साल पहले जैसी थी आज उसी हालत में आप उनको देख के आइए, जबकि उनमें इतना डीके हो चुकना चाहिए था जितना कि 100 साल में होता है, पर उन्होंने उस डीके को रोक दिया है। सिर्फ इतना ही काम किया है उसके चारों तरफ इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जो कह रहे थे कि अगर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज्यादा है और अल्ट्रावायलेट रेज उस जगह पे नहीं पहुंच पाती हैं, तो क्या हम इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं? हम आर्टिफिशियल लाइट नहीं दे सकते हैं? क्या हम वहां पर नमी दूर करने का कोई अपरेटस यूज नहीं कर सकते? हमें विज्ञान की ऐसी मदद लेने के लिए बहुत पोलाइटली विचार करना चाहिए, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, प्लीज मैं आपसे ये कहूँ। और वैसे आप जैसा उचित समझें, मैं लास्ट में ये जरूर कहता हूँ, इतना सब कहने के बाद, जिन आगम में प्रतिमाओं के संरक्षण हेतु पंचामृत अभिषेक, विभिन्न रस सर्वोषधि के अभिषेक का विधान है, वज्र लेप का विधान है, तब फिर अमोनिया नाइट्रोजन आदि रसायनों का उपयोग उचित है? ये प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है। अभी तो सिर्फ हमने कहा है, कल के दिन जब हम इसको करेंगे तब तो और लोग तैयार हो जाएंगे, वे खुद भी ना करेंगे लेकिन कोई करेगा तो उसे रोकेंगे। हम लोगों की ये प्रवृत्ति हमेशा से रही, कोई बहुत नई बात तो है ही नहीं, हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति रही है। हम लोग जो है ऐसे मौके पर बहुत अवेयर हो जाते हैं, जब तक शरण हो रहा था तब तक हम अवेयर नहीं है, कोई उस शरण को दुरुस्त कर रहा है तो हम बहुत अवेयर है। ये चीज हम लोगों को अपने अंदर से थोड़ी सी स्वयं विचार करके और इस पर एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हम जो इस तरह सोच रहे हैं वो ठीक है। ये बात बहुत अच्छी है कि हम जो प्रक्रियाएं हमारी प्राचीन हैं उन प्रक्रियाओं को एज इट इज बनाए रखें, लेकिन अगर उसमें कोई प्रक्रिया ऐड करने से वो प्रक्रिया ज्यादा परफेक्ट हो जाती है तो क्यों हम उससे परहेज करें। बस इतनी सी बात मेरे ख्याल से इसके लिए पर्याप्त है। जयपुर के जिन मंदिरों में हजार वर्ष की प्राचीन प्रतिमाएं हैं ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं, बहुत ठीक है, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है कि वे सुरक्षित क्यों हैं, उन्हें भी नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। वे सुरक्षित हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि हम अपनी पीठ थपथपाना चाहिए कि उनको हमने किस तरह सुरक्षित रखा है, वहां पर ह्यूमिडिटी कम रही होगी, वहां पर प्रॉपर लाइट जाती रही होगी, शायद इस वजह से वे सुरक्षित हैं। दूसरी जगह ऐसा इंतजाम हमें करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम केमिकल ट्रीटमेंट ही दें, वो तो बहुत लास्ट में की जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो उससे बेहतर है कि हम उसके उन चीजों के, जैसे कि जब हमारे जीवन और मरण का प्रश्न आता है तब हमें विचार करना पड़ता है कि अब थोड़ा सा पोलाइट होकर के बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, अगर मरण समय आ गया है और अभी आयु पूरी की पूरी शेष है, तब उस समय तो यहां तक लिखा हुआ है कि उन व्रतों में थोड़ी सी ढील करके उस मरण को टाल करके पुनः प्रायश्चित इत्यादि ले करके और अपने व्रतों को फिर से पालन करें। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अगर आप बहुत अधिक स्ट्रिक्ट होकर के अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं और उस दौरान आप अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो अपने परिणामों से आप देवायु पालेंगे, वहां पर सेवाए असयम के कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पोलाइट होकर के, जिसको कहते हैं स्थविर कल्प, जिनकल्प और स्थविर कल्प, जिनकल्प तो ऐसा है कि आज के समय में देखना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन स्थविर कल्प थोड़ा सा माइल्ड होकर के, थोड़ा सा मृदु आचरण करके और अपने जीवन की रक्षा करेंगे तो इस सड़े शरीर से भी यहां पर कर्मों की निर्जरा के ज्यादा उपाय हैं। ऐसा जब वहां लिखा हुआ है तो क्या हम इस चीज पे अप्लाई नहीं कर सकते उसको? ये तो बात लास्ट में, जब कोई मूर्ति हमारे लिए बहुत कीमती है, असल में अभी हमको अपनी मूर्ति से प्यार नहीं है, जैसे हमें अपने लोगों से प्यार होता है ना, उनके लिए हम कोई भी ट्रीटमेंट देने तैयार होते हैं। हम फिर नहीं देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मेरी माँ है और मेरी माँ डेथ बेस्ट पे, रखे रहो अपनी दो प्रतिमाएं, मुझे माँ का ट्रीटमेंट दिलवाना। करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं जोर से तो नहीं बोल गया एकदम, कभी ऐसा हो जाता है, एक्सक्यूज करिएगा। हाँ, मुझे लगता है कई बार कि जब हम वहां ऐसा कर लेते हैं तब कभी हमें ऐसा लगे कि ये मेरी इतनी प्राचीन प्रतिमा और ये मेरे सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती, मेरे नहीं तो किसी और के सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकती, इसको तो मुझे संभालना है। तब ऐसी कोई बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में हम इस तरह के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कोर्स में तो हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट स्वयं ही हमारे यहाँ पर पहले से परंपरागत ही हैं कि वर्ष में एक बार मंजन करना है, बढ़िया से साफ सफाई करके सब मूर्तियों को करीने से सजा करके रख देना है। बहुत सारे इन्फेक्शन से तो वो वर्ष भर के मंजन से ही ठीक हो जाती हैं, और हफ्ते में एक दिन निकाल करके और यदि हम उन मूर्तियों का मंजन करें तो और अच्छा है। उन पर जो भी हमारी परंपरागत प्रक्रिया है उसको भी हम बनाए रखें तो शरण के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन जहां हम उस परंपरागत प्रक्रिया के साथ अति करने लगते हैं वहां फिर वह प्रक्रिया भी दूषित हो जाती है। इतना ही देखो, भगवान बाहुबली के ऊपर 12 वर्ष में एक बार अभिषेक होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, संभव है और होना ही चाहिए, लेकिन उस प्रक्रिया को आप 12 वर्ष में के बाद तो करी और 6 महीने तक कंटिन्यूअस बनाए रहे, तो 12 वर्ष में जितना डीके नहीं हुआ वो आपने 6 महीने में कर दिया। आप इसको नहीं सोच रहे? सोचना चाहिए। उस प्रक्रिया को अगर हम एक दिन संपन्न करते तो वाकई हम कहते कि 12 वर्ष में हमने एक दिन की है, लेकिन 12 वर्ष में एक साल में एक बार करते तो 12 बार करते, हमने तो 12 वर्ष बाद 1200 बार किया है उसी प्रक्रिया को, तो हमने क्या किया? 12 वर्ष का गैप का कोई मतलब हुआ क्या? लेकिन क्या करें, मैं अभी सोच रहा था जब वो विद्वान कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से ये सब होता है और कुछ भी कारण नहीं है। बहुत बढ़िया धर्म की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जब धर्म की प्रक्रियाएं कमर्शलाइज हो जाती हैं और मैकेनाइज्ड हो जाती हैं, तब बेधर्म की प्रक्रियाएं रिचुअल की तरह रिपीट की जाती हैं, उनसे होने वाले बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। क्या ऐसा आप नहीं सोचते हैं? सोचिएगा, मैं सोच रहा हूं तो आप भी सोचिएगा, मैं गलत सोच रहा हूं तो आप भी गलत सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर अपन दुरुस्त कर लेंगे उसको। पर मुझे लगता है कि ऐसा जरूर सोचना चाहिए एक बार। मैं प्रश्नों के जवाब ऐसे ही दे रहा हूं और मुझे 15 मिनट और बाकी हैं। मैं प्रश्न थोड़े से हो सकता है कि रोकूंगा, मुझे थोड़ी सी बात अपने आचार्य संहिता और आधुनिक विज्ञान पर करने का मन था कि एक पेपर वो भी अपन समझ लें, कि इसके साथ साथ पैरेलल वो भी चलता रहे कि हमारी जो आचार संहिता है जिसमें हमने खाने पीने की चीजों का बहुत विचार किया है, उसके पीछे कोई साइंस है या कि बस ऐसे ही? उस पर मैं थोड़ी सी विचार, हो सकता मैं 10 मिनट में भी कर दूंगा शॉर्ट में। मूर्तियों पर किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करने से क्या हम जीव हिंसा के दोषी नहीं होंगे? बहुत प्यारे लोग हैं हम, कितने बढ़िया प्रश्न उठते हैं हमारे मन में, काश इससे भी और बढ़िया उठते कि हमारे जीवन में अपने खान पान रहन सहन में कितनी जीव हिंसाम करते हैं, उसे हम कब ठीक करेंगे? काश ऐसा बढ़िया सा प्रश्न और उठता। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो जीव हिंसा मेरे द्वारा निरंतर हो रही है, क्या मैं उससे बचूं? तब तो फिर मेरे साथ यहां बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अगर ऐसा सोच लें कि इस संसार में तो मेरे से एक क्षण भी ऐसा नहीं जब मैं जीव हिंसा से मुक्त हो जाऊं, तो फिर कुछ ऐसा करूं, जाति जरूर रोग मरणातुर रोग सहस्त्र, जाति जरूर रोग मरणातुर शोक सहस्त्र दीपिता दुस्सह नरक पतन संत्रस्त धिया प्रतिबुद्ध चेतशा जीवित मम्बु बिंदु चपलम तड़दभ्रसमा विभूतया सकलम इदम विचिंत मुनिया प्रश्माय वनांतम आश्रिता। इस संसार की विचित्रता और इसमें होने वाली जीव हिंसा को देख करके मुनि बनने की प्रक्रिया ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अभी हम मुनि महाराज जी ऐसा ट्रीटमेंट करें ऐसा तो कह नहीं रहे हैं, श्रावक को ट्रीटमेंट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि श्रावक ऑलरेडी बहुत सारी हिंसा कर रहा है। ठीक है ना, मेरा उत्तर तो वैसे हो गया, पर शायद आप फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। आप मेरे से ये सुनना चाह रहे हैं कि अभी इससे पहले कि वो ट्रीटमेंट शुरू हो बंद कर देना चाहिए। अभी तो शुरू नहीं हुआ, हमने तो विचार किया, ये तो विचार संगोष्ठी, इसमें कोई वर्कशॉप तो है नहीं कि हमने आपके यहाँ की मूर्ति उठा करके और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। डोंट फियर, डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी नहीं और जाने से पहले भी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। ऐसे जवाब दूंगा मैं इनडायरेक्ट, सीधे तो मैं देते नहीं जवाब। मूर्ति निर्माण के समय प्रतिष्ठा के पूर्व ही क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे मूर्ति क्षरण से बचा जा सके? है उपाय, लेकिन जब हम उस उपाय में सक्षम नहीं होते, हम उस उपाय से कुछ विपरीत करने लगते हैं, तब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होने पर रासायनिक, असल में मुझे लगता है कि सारे प्रश्न इसी तरह के होंगे, क्योंकि वो जो रासायनिक शब्द है ना वो हमें पचता नहीं, मुश्किल ये है। और अगर हम ये कहें कि कौन सा वाले कुएं का पानी, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए तब हमें उसका अभिषेक करना चाहिए, तो थोड़ा शायद पचेगा। क्षीर समुद्र के जल से अभिषेक किया गया है, तो जरा विचार करना कि क्षीर समुद्र के जल में कौन से केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं और जो कि हेल्पफुल है। तो हम कौन सा पानी जिससे अभिषेक करें जो कि हार्मफुल ना हो, हेल्पफुल हो, ऐसा विचार नहीं करते हम लोग। हम लोग कहते हैं अभिषेक करना चाहिए, लेकिन किस पानी से करना चाहिए? आपके कुएं के पानी से? हो सकता है उसमें सैलिनिटी बहुत हो, उसमें हो सकता है हार्डनेस बहुत हो, उसमें हो सकता है बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो, रसायन हो, होते ही हैं। पीएच वैल्यू किसी पानी की जीरो नहीं होती, होनी तो चाहिए, लेकिन एसिडिक या अल्कोहलिक होता है। अगर हम अल्कोहलिक वाटर का यूज, अगर हम सॉरी अल्कलाइन वाटर का यूज करें या एसिडिक वाटर का यूज करें जिससे कि हमारी मूर्ति का शरण ना हो, क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? हम केमिकल सुन करके घबरा गए, लेकिन हमें इसका विचार जरूर से करना चाहिए। हमें अपनी उन्हीं प्रक्रियाओं का समर्थन करना है जो चली आ रही हैं, लेकिन उनमें जो कुछ भी कहीं गड़बड़ी आ गई उसे दुरुस्त भी तो करना चाहिए, बस इतना ही है, और कोई घबराने की बात नहीं इसमें। केमिकल कह देने से बिल्कुल मत घबराइएगा आप। प्राचीन परंपराओं के अनुसार खोपरे, नींबू, गेरू, बालू, अरीठे आदि से साफ करना तर्कसंगत है या नहीं है? यही तो केमिकल्स हैं, इन्हीं से तो सारे केमिकल्स बनते हैं। हर्बल और मिनरल जो केमिकल्स बनते हैं वो तो ऐसे ही बनते हैं, वनस्पति से बनते हैं या कि इन इन पत्थर की चीजों से, मिनरल्स से बनते हैं सारे केमिकल्स। हम जैविक केमिकल्स की तो बात ही नहीं कर रहे जिसमें कि हिंसा संभव है इसलिए। और प्रिवेंशन हम पहले महत्वपूर्ण महत्व देंगे उस चीज का, यानी प्रतिष्ठा के समय ही अभिमंत्रित मूर्ति को पूरे जीवन भर किस तरह हमें उसका वो करना है, ये हम कर नहीं पाते। कई लोग तो मूर्ति पर चावल चढ़ा के चले जाते हैं। अब बताइएगा, आप अपने हाथ से उपद्रव कर रहे हैं और कल कहें कि कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए, आपने एक केमिकल तो उसके ऊपर डाल दिया और आप कह रहे हैं कि अब केमिकल नहीं डालना चाहिए। आपके चावल डाल देने से कोई हर्जा नहीं हुआ, और अगर मैं उस पर कोई ट्रीटमेंट देता हूं जो कि अहिंसक है तो ऐसा लगता है कि हर्जा हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, कम से कम प्लीज अपन बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, अपन कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि हमारी परंपरा को क्षति पहुंचे, हमारी विरासत को क्षति पहुंचे। हम तो सिर्फ संरक्षण की प्रक्रिया अपना रहे हैं, और संरक्षण भी ट्रीटमेंट भी जैसे साधु की भैया वृत्ति की जाती निर्बद्ध निर्दोष, वैसी ही निर्बद्ध और निर्दोष प्रक्रिया के प्रति हम अवेयर होंगे। अगर कहीं कोई वो निर्दोष और ठीक प्रक्रिया नहीं की जा रही तो हम उनको सलाह देंगे कि बिल्कुल निर्बद्ध पाप से रहित और निर्दोष प्रक्रिया इस पे करिएगा, आप इस तरह से करिएगा, ये बताने के लिए है। इसके लिए नहीं है कि कोई हम उसके साथ उसका कहना चाहिए मिसयूज कर रहे हैं। वर्तमान समय में जिस जल से अभिषेक करते हैं वो हार्ड होता जा रहा है। एग्जैक्टली आप सही दिशा में सोच रहे हैं। अभिषेक करने के पश्चात सूखे कपड़े से पहुंचने के पश्चात नमी रह जाती है, एकदम ठीक है। और इसीलिए तो जो अचल प्रतिमाएं हैं उनका रोज जलधारा नहीं की जाती, क्योंकि नीचे जाकर के पानी अटक जाता और उनको हम उठा नहीं पाते। इसलिए तो सिर्फ गीले कपड़े और सूखे, कहीं कहीं तो सिर्फ सूखे कपड़े से। देखो महावीर जी में लोग हल्ला मचाते हैं, हमको करने दो, हमको करने दो। नहीं, एक बार स्ट्रिक्टली अपन ने सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन को आप जितना ज्यादा नमी पहुंचाएंगे, और हमारे अपने सांस तक से तो नमी पहुंचती, इतना हम लोग गर्दी कर लेते हैं और इतने पास चले जाते हैं। लिखा है कि मूर्ति के दर्शन एक फिट कम से कम, मुनि महाराज को भी एक फिट दूर से करना चाहिए ताकि वो सांस न टकराए। वो कह रहे हैं कि अभिनय होगी, और साइंस कह रहा है कि अभिनय तो होगी होगी, आपकी जो नमी है वो मूर्ति से टकरा कर उसका क्षरण करेगी जनाब। आपकी विनय तो सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ मूर्ति का संरक्षण भी। तो हम एकदम ऐसे, हम तो छू लेंगे भगवान को। कई लोग हमने देखा कि पूरी मूर्ति पर ऐसा अपना हाथ हाथ, जबकि कैसा है कोई भरोसा नहीं है। वो पूरा फिरा देंगे हाथ लपेट कर को, फिर पूरे अपने माथे में पहुंच लेंगे, जैसे कि भगवान ही बन गए, अपन भगवान को छू लिया। नहीं, ये प्रक्रियाएं तो कहना चाहिए बहुत अच्छी तो नहीं है। इनमें तो संशोधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनमें भी संशोधन करना चाहिए। आप उससे मस्तक और आंखों पर, मुख पर सफेदी के रूप में दिखाई देने लगती है। देख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है उदाहरण। अभी हम जिस मंदिर में रुके थे वहां यही मूर्ति में हो गया है, हमारी अपनी उस अज्ञानता की वजह से। कोई हमें जागृत कर रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें और कुछ बात नहीं कर रहा किसी चीज की। यही तो अवेयरनेस हमारे अंदर आ जावे कि हमें जो प्रक्रियाएं कही गई हैं उनको कैसे करना चाहिए, जिससे कि और कोई अतिरिक्त प्रक्रिया करनी नहीं पड़े, कोई अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता ना पड़े। हम इस तरह से अपनी प्रक्रिया को दुरुस्त कर सकते हैं। क्या वो भी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाती तो है? क्या उसे साफ करने के उपाय हैं? ये सब उपाय पर ही तो अपन चर्चा कर रहे हैं भैया। तुलसी का रस, यूकेलिप्टस के तेल में मूर्ति सफाई की क्या विधि है? इस पर कोई पुस्तक है क्या? मैं इसके बारे में विद्वान लेखक से खुद कहूंगा कि यदि शाम के सत्र में हमें समय मिला तो हम एक बार उनको फिर से इस प्रश्न के जवाब के लिए आपके सामने लाएंगे। अभी तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। पर्टिकुलर मूर्ति मंदिर के डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया आदि को जानने के लिए क्या सैंपल की आवश्यकता जरूरी है? मेरे ख्याल से तो सैंपल की आवश्यकता जरूरी है, और सैंपलिंग का तो इतना अच्छा उपाय उन्होंने बता दिया कि हमें मूर्ति को टच भी नहीं करना है, और मूर्ति पर जो फंगल इन्फेक्शन या कि एल्गी या कि जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो हमें मालूम पड़ जाएगा, उसके स्पोर्स हम कलेक्ट करके और उस बैक्टीरिया की प्रजाति और उसका क्या ट्रीटमेंट है ये हम कर लेंगे। तो ये तो ठीक ही है। ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ये कैसे तय करेंगे, उसी के बेसिस पे तय होगा। वो उसका पेपर अपन पब्लिश कर देंगे तो उसमें शायद ये सारी प्रक्रिया होगी। अभी संक्षेप में अपन ने समझा है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कि अगर एक इस तरह का बन जाए कि जिसमें कि हमें लग रहा है कि ये मूर्ति में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, हम उनको बुलाएं और पता करें कि कौन सा किस तरह का इन्फेक्शन है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या रीठा से साफ करने पर हो जाएगा, क्या इसको गर्म पानी से पहुंचने पर हो जाएगा, क्या ट्रीटमेंट है जो कि बहुत निर्दोष है और जिससे कि मूर्ति के जो अभिमंत्रित मंत्र हैं उनको क्षति नहीं पहुंचती। मैं तो इस तरह सोचता हूं, मूर्ति अकेले को नहीं, मूर्ति के मंत्र जो हमने किए उन तक को क्षति नहीं पहुंचाए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस पर भी हम विचार करें। अच्छा है, बायो फाइनलिन फिल्म, तुलसी का रस, लहसुन, यूकेलिप्टस का प्रयोग मूर्ति पर धार्मिक दृष्टि से कहां तक उचित है, इस पर भी हम विचार करेंगे आगे। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे धर्म की कोई भी क्षति ना हो। हमने ये विज्ञान संगोष्ठी इसलिए नहीं की है कि हम विज्ञान को सर्वोसर्वा मान करके और धर्म को उससे ऊपर मान लें। हमने इसलिए की है कि इतने तमाम विज्ञान के बावजूद भी सर्वोसर्वा धर्म है और वो उससे अभी भी ऊपर है। आप समझ रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं बैठा हुआ हूं, क्या इतना विश्वास नहीं है आपको मेरे ऊपर? इतने दिनों में भी नहीं हो पाया तो आप किस दम पर कह रहे हैं कि हम आपको 4 महीने रोकेंगे? हाँ, मैं कम से कम इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे प्रति विश्वस्त रहें। मैं इस तरह की कोई भी चीज पसंद नहीं करता हूं जो आप सोच रहे हैं। उनके प्रति मैं भी बहुत जागृत हूं। अपनी धार्मिक परंपराओं का मेरे ख्याल से तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम ये भी आता है कि आप इतने एडवांस सब बातें करने के बावजूद भी बड़े परंपरावादी हैं, कई बार ऐसा लगता है। हाँ, कई लोग मेरे ऊपर ये भी कहते हैं, और मैं अपनी परंपराओं का बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे से निश्चिंत रहिएगा कि मैं ऐसी कोई भी प्रक्रिया, आपको अगर लगता है कि परंपरा से हट करके ये चीज़ हो रही है, आप फौरन अवेयर रहें और दूसरे को भी अवेयर कर दें। लेकिन परंपरा में होने वाली जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए भी अवेयर रहिएगा। ऐसे लकीर के फकीर मत बनिएगा कि जैसे अपन अभी चर्चा कर रहे थे कि किया तो अभिषेक 12 साल में एक बार, लेकिन साल भर तक करते रहे और 12 साल का मामला एक दिन में निपटा दिया पूरा का पूरा। हाँ, फफूंद और काई इत्यादि जीव राशि को साफ करना किस प्रकार उचित है, उचित और अनुचित का विचार तो बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि फफूंद और ये जो काई है वो कितने इंद्रिय जीव है और उसकी लाइफ स्पॉन कितनी है। आप मानिएगा ये सिद्ध हो चुका है पिछली चार संगोष्ठियों में कि बैक्टीरिया, अल्गी, फंगाई जितनी भी चीजें हैं ये यूनिसेलुलर हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, जैसे जल में हैं, जैसे वायु में हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, जितनी हिंसा उसमें होती है उतनी ही इनमें है। इतना जरूर है कि जब इनके ग्रुप के फॉर्म में ये होती हैं, जब अनंत काय होती हैं, तब इनका इनको हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, हम इनको नष्ट करने का कोई प्रकार उपाय करें या ना करें, बाहर से सिर्फ ऐसा एटमॉस्फियर क्रिएट कर दें कि और नए फंगल इन्फेक्शन ना हो, तो आप मानिएगा कि जो फंगल इन्फेक्शन है वो अपने आप वॉश आउट हो जाए। बैक्टीरिया के साथ में यह है कि अगर उसे फेवरेबल वातावरण मिलता है, कंडीशंस मिलती हैं, तब वो ग्रो करता है। वैसे तो एक सांस में 18 बार वो अपना जन्म मरण खुद करता रहता है, आप उसको क्या बचाएंगे और क्या मारेंगे। मानिएगा बैक्टीरिया कैन नॉट बी किल आफ्टर ग्राइंडिंग, बॉइलिंग, क्रशिंग किसी भी कंडीशन में। क्यों? अनंत अनंत जीव राशि पूरे वातावरण में ठसा ठस भरी है, ये आगम का वाक्य है। आप उसको ना बचा सकते ना मार सकते, हम तो सिर्फ बचाने का भाव करते हैं, बचा थोड़ी पाते हैं। पानी छानने में क्या हम एक इंद्रिय जीव बचा पाते हैं, वो तो हमारे वाटर फिल्टर से बाहर ही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम पानी छानने की प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि हमारी जीव रक्षा करने का भाव बना रहे। जीव रक्षा हमसे कितनी होगी? आपको ऐसा लग रहा है कि एल्गी, फंगाई इनमें जीव है। आप अपने खाने पीने की चीज में आप मानिएगा जो ईस्ट का प्रयोग कर रहे हैं ना, वो एल्गी का एक या फंगाई का एक प्रकार है, जिसको कि आप अपने इडली, डोसा और केक और इन आधा घंटा ले दूं, लेट शुरू किया इसलिए मैं आधे घंटे और दे दूं, ये बेईमानी आपने की और मुझसे भी करवा रहे हैं। वाह, ये तो ये नहीं, मैं सिर्फ आपसे 5-7 मिनट है ना, आपके लेट होने का पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात ऐसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां पर जैसे किसी भी चीज की मर्यादा बना दी, खाने पीने की चीजों की मर्यादा बनाई, उसके पीछे क्या कारण रहा? एक ही कारण रहा, बरसात के दिनों में मर्यादा अलग है, ठंड के दिनों में अलग है, गर्मी के दिनों में अलग है। इसके पीछे कोई साइंस है? तो कह रहे हैं हां, जब नमी और एक विशेष तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री बहुत सारे बैक्टीरिया को कहना चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है, तब हम जिन दिनों में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के बीच में रहता है, उन दिनों हमारी मर्यादा चीजों की, खाद्य पदार्थों की कम हो जाती है। और जिन दिनों टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, गर्मी के दिनों में देखिए टेम्परेचर बहुत है, ह्यूमिडिटी कम है, देखिएगा फेवरेबल कंडीशन है, हम मर्यादा बढ़ा देते हैं कि आटे की मर्यादा गर्मी के दिन में 5 दिन हो गई है, क्योंकि बारिश में बहुत अधिक नमी है और टेम्परेचर भी ऐसा है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करने वाला है, तो 3 दिन की मर्यादा है। आप आश्चर्य करेंगे कि हमने ऐसे नहीं बना दी कि 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, ठंड के दिनों में 7 दिन की। क्यों ठंड के दिनों में 7 दिन की है? उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा उसको, ह्यूमिडिटी भी उतनी नहीं रहती है, टेम्परेचर भी उतना नहीं रहता है। हम जो आर्टिफिशियल फ्रीजिंग करते हैं वो आर्टिफिशियल फ्रीजिंग तो फिर भी फेल हो सकती है, लेकिन जब शीत अपने आप पूरे वातावरण में शीतलता है तो बैक्टीरिया बहुत कम ग्रो करता है। हमने अपनी खाद्य पदार्थों की सामग्री आचार्यों ने हिंसा और अहिंसा को ध्यान में रख के अपने आप बढ़ा दी। क्या हमको इसको गौरव नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे ही नहीं लिख दिया है किताबों में, जिनवाणी में, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, इसके पीछे साइंस है। हम कहते हैं कि 24 घंटे हम पकी हुई तली हुई चीजें खा सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि उन तली हुई चीजों को क्यों खा सकते हैं, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि चूंकि उन पर एक कोट हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, उस पर एक ऑयल की लेयर बन गई है, अब बैक्टीरिया उस पर अपना इंफेक्शन ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो हम 24 घंटे तक उस सामग्री को खा सकते हैं, लेकिन रोटी को हम 12 घंटे से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। दाल सब्जी जो हमने बनाई उसको हम 12 घंटे तक उपयोग करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, उसकी मर्यादा निर्धारित करती। हम देखते हैं कि आचार्यों ने लिखा हुआ है कि आप जमीखंड नहीं खाएं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप उदंबर फल नहीं खाएं, ये क्या बात है? आज भाला की बॉटनी वाले ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे स्पीसीज हैं खाने की, वो सब हमारे लिए खाने को बनी हो, ऐसा नहीं है। कृपा करके 2-4 चीजें ही खा करके अपना जीवन चलाएं, बाकी को सुरक्षित रहने दें। वो अपनी भाषा में ये कह रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो वनस्पति के रूप में हमारे लिए आज अवेलेबल है, उन सबको हम डिस्ट्रॉय ना करें वरना पर्यावरण बिगड़ेगा। वो इस भाषा में बोल रहे हैं, हमारे आचार्य किस भाषा में बोल रहे हैं, भाषा का अंतर है। हमारे आचार्य कह रहे हैं अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए, आत्मशोधन के लिए, अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए आप अपने जीवन में कम से कम वनस्पतियों का उपयोग करिए। उन वनस्पतियों को करिएगा जिनमें हिंसा कम है, करना तो है लेकिन किन का करें जिनमें हिंसा कम है। जमीकंद में, उदंबर फल में हिंसा ज्यादा है, आप उनका प्रयोग नहीं करिए। उदंबर फल क्या चीज है, इसको फॉल्स कंपोजिट फूड कहते हैं बॉटनी की भाषा में। ये एक्चुअली फूड नहीं है, ये एक्चुअली कोई फल नहीं है, ये फूलों का गुच्छा है। थैलेमस में जो एक प्यालीनुमा होता है उसमें फूल जाकर के ये फल की आकृति दे देते हैं, जितने भी, जैसे अंजीर, अंजीर में क्या है, फूलों का गुच्छा है, वो फल जैसा मालूम पड़ता है, और उसके भीतर एक ब्लास्टोफेगा नाम का जो पॉलिनेशन करता है, 4 इंद्री जीव है ततैया, वो अंदर जाकर के और पॉलिनेशन में मदद करता है उसके, और वो अपने लार्वा और इल्ली उसी में पैदा करता है, और वो उसी में बड़े होते हैं, वे उसे ही अपना खाद्य बनाते हैं। बताइएगा, उस अंजीर के भीतर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, हमें नहीं मालूम। हमारे आचार्यों ने तो सिर्फ एक बात कह दी कि नहीं खाना, अहिंसा की दृष्टि से नहीं खाना, लेकिन साइंस ये सिद्ध कर रहा है कि वास्तव में वो हमारे खाने योग्य चीज नहीं है, वो कोई फल नहीं है, वो तो सिर्फ फूलों के का गुच्छा है जिसमें कि पॉलिनेशन और परागण के लिए वो इस तरह की प्रक्रिया, वो कहना चाहिए कि जीवों के उत्पत्ति का स्थान है, वो उनका प्रसूति ग्रह है, बताइए, और वो उनका मरघट भी है, वे वहां मर भी जाते हैं और वहीं जन्म लेते हैं, और उनके रहने के स्थान को हम, इसलिए तो लिखा है आयुर्वेद में कि ये जंतु फल है और ने उमर फोड़े ने पखा उड़ाए, एक कहावत है प्रचलित कि अगर आप उसको फोड़ देंगे तो आपको, हमारे पास तो फोटोग्राफ्स हैं, बैठे हैं प्रोफेसर बॉटनी के, उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए, कैसे उसको तोड़ने पर कौन सा जीव बाहर निकल करके गया, हमारी नेकेट आई से नहीं दिखा लेकिन माइक्रोस्कोप ने उसको देख लिया कि ये देखो, और उसको हाईलाइट बना करके प्रोजेक्टर पर, वो है नहीं तो बता देखते कि ये फोड़ा हमने अंजीर और अंजीर में से ये निकला 4 इंद्री जो दिखता नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप उसको पकड़ रहा है कि ये निकल गया। सामने सामने दिखने वाले तक जीव, तो हमने उदंबर फल इस तरह बना कर दिया। जो जमीकंद है, जमीकंद क्यों नहीं खाना चाहिए, इतनी बढ़िया चीज है, आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या जरूरत है, क्या आलू छोड़ने से मोक्ष हो जाएगा, ऐसे इन नाजिक तुम्हारे पास हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम ये नहीं खोजते हैं कि क्या बात थी, क्या क्या कारण रहा होगा कि जिससे आचार्यों ने इन चीजों का निषेध करा। यह बात अलग है कि हमारा उनके बिना नहीं चल रहा, हम खा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का गौरव नहीं होना चाहिए कि ये चीजें आचार्यों ने बिना एपरेटस और बिना किसी लेबोरेटरी के अपने सूक्ष्म ज्ञान से कैसे जान ली होंगी, इसका गौरव नहीं होना चाहिए हमें, होना तो चाहिए भाई, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये बिल्कुल जुदी बात है, लेकिन क्या इतना विचार करके हमें गौरवान्वित नहीं होना चाहिए कि जमीकंद क्यों छोड़ने को कहा गया था। जमीकंद जितने भी हैं वे सब जमीन में बहुत गहराई में होते हैं, वे स्टेम और रूट दोनों तरह के होते हैं, तने के आकार के या कि जड़ के आकार के, दोनों तरह से वे डेवलप होते हैं। ये एक्चुअली खाने की चीज नहीं है, ये तो रिजर्व फूड है। वो पेड़ जो कि ऊपर लगा हुआ है 6 महीने तक जिंदा रहने के लिए जड़ों में अपना अतिरिक्त भोजन संचित करके रखता है, वो आड़े समय में उसके काम आने वाली चीज है, वो हमारे खाने की चीज नहीं है। वो तो हम उससे छीन लेते हैं और पूरे 6 महीने जिंदा रहने वाले पौधे को नष्ट कर देते हैं। एक फल खाने के लिए पूरे वृक्ष को नष्ट करना, देख लो दीवारों पर बना हुआ है चित्र, कृष्ण लेशा का प्रतीक है, यही है। एक मूली और एक गाजर खाने के लिए 6 महीने जिंदा रहने वाला पूरा वृक्ष नष्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको आम खाना है, वृक्ष ज्यों का त्यों रहेगा, बाकी फल ज्यों के त्यों रहेंगे, आम खा लो, उसमें कोई दोष नहीं है, देखना आप। और अगर आप एक मूली खा रहे हैं तो कितना ज्यादा, एक फल के लिए पूरा पेड़, अगर वो जिंदा रहता तो 6 महीने जिंदा रहता, लेकिन आपको मूली खानी है तो उस पूरे पेड़ को नष्ट करना पड़ेगा। उसके बिना आप मूली नहीं खा सकते, गाजर नहीं खा सकते, आप आलू नहीं खा सकते, क्यों? पूरा पेड़ नष्ट किए बिना यह संभव ही नहीं। फिर उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होने से और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है, बैक्टीरिया, अलगई, फंगाई, बहुत सारे उनके नाम हैं, मैं बॉटनी का तो विद्यार्थी रहा नहीं, मैं तो सिर्फ इस इंटरेस्ट से ये सब चीजें पढ़ता हूँ कि जिससे हमें अपने धर्म पर गौरव हो। हमें धर्म पर गौरव होगा तो ध्यान रखिएगा, जिस दृष्टि की निर्मलता की और जिस सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं वो क्षण भर में हो सकती है। हाँ, अगर हमें एक बार गौरव जागृत हो गया, सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतु फिर नहीं बहनते हन्यते आज्ञा सिद्धम तदग्राह्यम ना अन्यथावादिनो जिना, मेरे भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते, तत्व सूक्ष्म है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर जैसा भगवान ने कहा वैसा ही है, अगर ऐसी आज्ञा मान के हमने स्वीकार कर लिया, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम तो तर्क दे करके और उस चीज को पुख्ता करके और फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास और कितना मजबूत होना चाहिए। अभी तो हम हाथ जोड़ के विश्वास करते थे, अब तो हम उस चीज को, आगम की चीज को विज्ञान से सिद्ध करके और फिर पूरे गौरव के साथ उसको स्वीकार कर रहे हैं। तब देखिएगा कि यह प्रक्रिया बहुत अच्छी ही प्रक्रिया मानी जाएगी। वो जितने भी बैक्टीरिया उसमें बहुत अधिक मात्रा में एक स्क्वायर फीट फर्टाइल सॉइल में मिलियंस ऑफ मिलियन बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और नॉर्मल कोर्स में, और अगर उसमें कोई मूली गाजर जैसी कोई खाद्य सामग्री है तो उसके चारों तरफ और भी बड़े बड़े इवन मोलस्का, गैस्ट्रोपॉड्स, ये अंग्रेजी नाम है लेकिन इतने छोटे छोटे से शंख, गैस्ट्रोपॉड्स किसको बोलते हैं, शंख, मोलस्का उसी की फैमिली, उसी में से निकलता है ये, इतने छोटे छोटे पता नहीं लगते हैं वो शंख, दो इंद्री जीव है, वो सब आपके उखाड़ने में मर गए, उनको उखाड़ते समय वो सब मर गए दो इंद्री। आप बड़े अहिंसा के विचार करने वाले लोग माने जाते हैं वैसे तो, देखो अभी कितनी कितनी जल्दी से हम अवेयर हो गए हिंसा के बारे में, लेकिन इस हिंसा के बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, होनी तो चाहिए, जरूर से होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, एक एक आलू में 5-10 आईवर्ट्स होते हैं साइंस के हिसाब से, यानी उसके पीस लगा दिए जाएं तो एक एक आलू से 10-10 पौधे पैदा हो सकते हैं अंकुर फूट करके। आपने एक खालू क्या मिटाया है, आने वाले 10 पौधों को नष्ट कर दिया। इसलिए तो शायद हमें इस बात की सावधानी रखने के लिए कहा गया कि हम जमीकंद को अपनी डाइट में अगर मिल कर सकें तो बहुत अच्छे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमाइज कर लें। हाँ, मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस तो संभव है, हम हमेशा उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, क्या हमारा उनके बिना चल जाता है और दूसरी चीजों से हम हमारा चल जाए तो क्यों हम अपने थोड़े से शौक के पीछे, थोड़े से जिब्बा लालच के पीछे इस हिंसा से जबरदस्ती लिप्त रहें, उस हिंसा से बच सकते हैं। और भी दही के बारे में भी बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि दही भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि साइंस के हिसाब से तो वो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया से जमता है। तो ठीक है, फर्मेंटेशन इज नथिंग बट ए केमिकल प्रोसेस प्रोसीड बाय द माइक्रोब्स, बहुत ठीक परिभाषा दी है कि ये माइक्रोब्स से, लेकिन है एक केमिकल प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस होता है, पाइरुविक एसिड बनता है और पाइरुविक एसिड अपचयित होकर के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट है, कैशीन जिसको कहते हैं, दूध की प्रोटीन को कैशीन कहते हैं, वो कैशीन कोगुलेट होकर के पैसिपरेट हो जाती, थक्का बन जाता है, वो कहलाता है दही कर्ट जिसको कहते हैं। ये प्रोसीजर है, साइंस ठीक कह रहा है कि ये प्रक्रिया है, लेकिन इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया में माइक्रोब्स जो है अपना रोल, और वो भी एनरोबिक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकी, ये तीन बैक्टीरिया का विशेष रोल है। जो कि हमारे दही की प्रक्रिया को प्रोसीड करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 35-36 डिग्री है। इस टेम्परेचर पर तो हमारे सब लोग जमाने वाले जानते हैं कि थोड़ी गर्मी में रख दो, चूल्हे के पास रख दो, गर्म जगह पर रख दो, जम जाएगा जल्दी से दही। और हम लोग दही से दही जमाने को नहीं कहते हैं, मर्यादित दही हमारा भक्ष्य है, खाने योग्य है। क्यों? एक मर्यादा के बाद सिर्फ इन बैक्टीरिया के अलावा भी और बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल हैं वो भी पैदा होने लगते। दही में खट्टापन आना क्या है, वो और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और अधिक मात्रा में फैला पैदा हो जाते। और इतने नहीं, 24 घंटे के बाद फिर उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये तो लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना शुरू होता, C2H5OH बनना शुरू होता, अल्कोहल शराब बनना शुरू होती। हम 24 घंटे के बाद का दही क्यों नहीं खाते हैं? इसलिए नहीं खाते। दही तो खाते हैं लेकिन 24 घंटे के बाद का नहीं खाएंगे। दही से जमाए हुए दही में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, इसलिए हम उसको भी नहीं खाते। दही को या तो हम सुखा करके उसका पाउडर बना के दही का रख लेते हैं और दूध में डाल के दही जमा लेते हैं, या कि हम एक किसी कवच जो कि नारियल का है या कि बादाम का है उसको दही में पहले डाल देते हैं, आधे घंटे डले रह के निकाल लेते हैं, सो धो करके पहुंच करके रख लेते हैं, मानो मशीन बन गई और नया दही जमाने के लिए। हमने ऐसी निर्दोष प्रक्रियाएं ईजाद की हमारे आचार्यों ने, जिसमें कि हिंसा भी ना हो और हमारा काम भी आसानी से निकलता रहे। जो दही में बैक्टीरिया पैदा होता है, मानिए वो यूनिसेलुलर है, एक इंद्री है, उसमें उतनी ही हिंसा होती जितनी कि वनस्पति के खाने में होती, इसलिए ज्यादा इसको हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है कि दही में भी हिंसा होती है, ठीक उतनी ही होती जितनी कि वनस्पति में, बल्कि वनस्पति में कई बार ज्यादा हो जाती है, जैसे कि हम जमीकंद खाते हैं तो उसमें और ज्यादा होती है, और जैसे कि हम कच्ची अवस्था में हल्की छोटी छोटी सी पत्तियां जो बहुत टेस्टी लगती हैं, छोटे छोटे से मटर की फलियां जो कि अभी साधारण अवस्था में हैं, जिनमें कि अनंत निगोधिया जीव अभी हैं, बाद में अप्रतिष्ठित होंगे वो हमारे खाने योग्य, लेकिन हम कच्ची अवस्था में उनको खाते हैं, उनमें तो और ज्यादा दोष है, दही से भी ज्यादा। आप क्या सोच रहे हैं? दही में जो फर्मेंटेशन है वो तो हम रोज, हमारी माँ रोज करती है कि आटे को सान करके उसमें पानी मिला करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके रख देती, ऊपर से गीले कपड़े से ढक देती। अगर नई बहू है तो नहीं समझती इस चीज को, और फल का तुरंत बनाना शुरू करती तो फूलते ही नहीं है। माँ क्या कहती, जो बुजुर्ग हैं, थोड़ी देर रखा नहीं दो, रवा फूल लें दो, रवा। ये रवा फूलना क्या चीज है? ये फर्मेंटेशन हो रहा है उसमें, आधे घंटे में फर्मेंटेशन होकर के और फिर हमारे रोटी बनाने लायक। वहां जो फर्मेंटेशन हो रहा है ठीक वैसा ही फर्मेंटेशन, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। हम सेव फल खाते हैं, सेव फल भी हम नहीं खा सकते जब तक कि बैक्टीरिया उसमें फर्मेंट करके हमारे खाने लायक ना बनाए। फिर अपने खाने लायक जब बनाने लगता तो वो फिर पिट्रिफिकेशन, वो सड़ान की प्रक्रिया, दागी हो गया, दागी हो गया, हरा हरा फफून सा लग गया, या कि गल गया, वो जो गल गया है वो अब आपके काम का नहीं रहा, वो बैक्टीरिया के खाने के लिए उसने गलाया उसको, अभी तक तो उसने पकाया था उसको, वो जो पकाने की प्रक्रिया वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। तो फर्मेंटेशन को आप हवा नहीं माने, फर्मेंटेशन जो निर्दोष है वो स्वीकृत है, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्वीकृत नहीं है जो शराब में होता है, या कि जो इसमें होता है चाय में होता है। चाय में भी फर्मेंटेशन होता है, हफ्तों फर्मेंटेशन करने के बाद ये ब्लैक होती है और इसमें ऐसा टेस्ट और ऐसा ऑर्डर आता है। ये प्रक्रिया भी कभी आप समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया, और अपन ने थोड़ी सी चीजें ये भी जान ली कि हमने खाने पीने की चीजों में भी और विज्ञान को समाहित कर रखा है। इतना ही नहीं, आज वर्तमान में जैन दर्शन की जो भी परंपराएं हैं वे भी विज्ञान सम्मत हैं। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हम अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर गौरव कर सकें और उनमें होने वाली टूट फूट को विज्ञान की मदद से ठीक करके अपने आत्मा के कल्याण में निमित्त बना सकें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज। मिथ्या को मनास देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानु शिव खानी है, शहु द्रव्य जान देखो, बंदे भेद दान देखो, स्वर पिछान देखो, परम प्रमाणी है, अनुभवताय देखो, जीव के जताय देखो, कहुना सताय देखो, दव्य उर आनी है, जहां तहां तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, ये जीवन। रानी माता की जय।
बूढ़े आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सत्संग पूज्य मुनि 108 क्षमा सागर जी महाराज एवं भव्य सागर जी महाराज के चरणारविंद अर्घ निर्वाणते स्वाहा।